بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریے شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार है, जुलाई की 25, जिलहिज की 25 और मुर्दाद माह की 3 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले आप विश्व समाचार सुनिएगा, विश्व समाचारों के बाद हम आपको राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, फिर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको ये हम बताते चले कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर अपनी सुविधा के अनुसार देख और सुन सकते हैं। पता है parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारा। ईरान का मुकाबला करने के लिए अब अमरीका ने नया रास्ता चुना है। IRGC का कहना है कि अगर इसराइल ने कोई गलती की तो उसे हजारों किलोमीटर की भूमि से हाथ धोना पड़ेगा। रूस का कहना है कि गेहूं के आड़ में यूक्रेन को हथियार न भेजे जाएं। म्यांमार में एक सांसद सहित 4 लोगों को फांसी दे दी गई। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान का मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका ने एक नया रास्ता चुना है। पिछले कई दशकों से ईरान के विरुद्ध सैन्य विकल्प के प्रयोग से निराश होकर अमेरिका ने अब एक नया रास्ता चुना है। ईरान के संसद सभापति ने कहा है कि पिछले 40 वर्षों से ईरान के विरुद्ध सैन्य विकल्प की नीति अपनाकर अमरीकी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इससे उनको सफलता नहीं मिल पाएगी। सैन्य विकल्प की नीति में विफल होने के बाद अब अमरीकियों ने सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया है। अब वे अपने दुष्प्रचार संस्कृति की आड़ में कर रहे हैं। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने तेहरान में आयोजित कल्चरल काउंसलरों की बैठक में कहा कि बहुत से विद्वान अब संस्कृति के महत्व को समझ रहे हैं, जबकि ईरान की इस्लामी क्रांति संस्कृति पर ही आधारित थी।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान परमाणु बम के निकट पहुंच गया है। ट्रंप ने एक भाषण में दावा किया कि ईरान की वर्तमान सरकार हर समय से अधिक परमाणु बम के निकट पहुंच गई है। उन्होंने फ्लोरिडा राज्य में अपने भाषण के दौरान दावा किया कि आप रिपोर्टें पढ़ें, उनके पास जरूरत का संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और वे बहुत कम समय में परमाणु बम बना सकते हैं। मैं कुछ महीने या उससे कम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस समय ईरान के पास एक परमाणु बम हो। इसी प्रकार ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि परमाणु संपन्न ईरान दुनिया को उससे भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जितना अमेरिका के रेडिकल डेमोक्रेटर ने पहुंचाया। इसी बीच ज़ायरीन शासन ने भी एक ट्वीट में दावा किया है कि परमाणु संपन्न ईरान न केवल इसराइल के लिए खतरा है बल्कि पूरी दुनिया और क्षेत्र के लिए खतरा है और इससे पहले कि देर हो जाए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद होना चाहिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति संरक्षक बल सिपाह पासदारान IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि इसराइल को हम बता देना चाहते हैं कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो हमेशा के लिए 27,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि से हाथ धो बैठेगा जिस पर उसने अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। कमांडर रमजान शरीफ ने कहा कि शहीदों की सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा सर्वोच्च नेतृत्व का अनुसरण और इस्लामी व्यवस्था की सुरक्षा है जिसकी बुनियाद स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने रखी थी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि शहीदों की अपेक्षा हमसे ये भी है कि हम विलायत फकी का अनुपालन और अनुसरण करके इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करें। ये वो वास्तविकता है जिसका उल्लेख लगभग समस्त शहीदों ने अपने वसीयत नामों में किया है। विलायत फकी के समर्थक व अनुसरणकर्ता रहो क्योंकि वे विलायत फकी के अनुसरण में इस्लामी व्यवस्था की सुरक्षा को निहित मानते थे।
अमरीकी पूर्व सीनेटर रिचर्ड ब्लॉक का कहना है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर संयुक्त राज्य अमरीका घिरता जा रहा है। वर्जीनिया के पूर्व सीनेटर रिचर्ड ब्लॉक ने, जो पूर्व सैन्य अधिकारी भी रह चुके हैं, ट्वीट किया कि रूस के विरुद्ध अमरीका और पश्चिम की नीतियां अतार्किक और विध्वंसक रही हैं। उन्होंने कहा कि यही नीतियाँ विश्व में व्यापक आर्थिक संकट का कारण बनी हैं। अमेरिका के इस पूर्व सीनेटर के अनुसार हमें व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाने से बचना चाहिए जिसने ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। रिचर्ड ब्लॉक कहते हैं कि मॉस्को ने कोयले, तेल और गैस के निर्यात पर किसी भी प्रकार की कोई सीमितता निर्धारित नहीं की है जबकि अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा काम किया है। वर्जीनिया के पूर्व सीनेटर रिचर्ड ब्लॉक के इस बयान से पहले अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फ्रंट ने ऐलान किया था कि रूस की गैस पर लगाए गए प्रतिबंध इटली, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देशों में गंभीर आर्थिक मंदी का कारण बने हैं।
रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि ऐसा न हो कि यूक्रेन को गेहूं की आड़ में हथियार भेजे जाए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि जो जहाज यूक्रेन से गेहूं लेने आए उनके जरिए कीव को हथियारों की सप्लाई न की जाए। सर्गेई लावरोव कहते हैं कि मॉस्को इस बात की पुष्टि चाहता है कि गेहूं लेने के लिए जो जहाज यूक्रेन आए उन पर हथियार बिल्कुल भी न हो। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने जो खाद्य संकट पैदा किया है उसे उसको ही समाप्त करना होगा। रूसी विदेश मंत्री के अनुसार पश्चिम ही रूस के जहाजों को बंदरगाहों पर लंगर डालने नहीं दे रहा है जिसके कारण एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। लावरोफ कहते हैं कि इस बात के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि वे जहाज को गेहूं लेने के लिए यूक्रेन तो आए किंतु उन पर हथियार न हो। याद रहे कि तुर्की के इस्तांबुल नगर में एक बैठक के दौरान यूक्रेन, तुर्की और राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन से अनाज के निर्यात के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
म्यांमार की सैनिक सरकार ने इस देश के एक पूर्व सांसद सहित 4 लोगों को फांसी दे दी है। जिन 4 लोगों को फांसी दी गई है उनमें से एक NLD अर्थात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पूर्व सांसद हैं। सरकारी समाचार पत्र मिरर डेली के अनुसार आतंकवादी गतिविधियां करने, हिंसा करने और अमानवीय कृत्यों को सहयोग के कारण इन 4 लोगों को फांसी दी गई। NLD के पूर्व सांसद फ्यो जयाथ्यो पर जनवरी में आतंकवाद के वित्त पोषण और कई अन्य आरोप लगाए गए थे। उनकी पत्नी का कहना है कि फांसी दिए जाने के बारे में उनको सूचित नहीं किया गया। इसी बीच राष्ट्रीय एकता सरकार ने सेना द्वारा लगाए जाने वाले सारे आरोपों को रद्द कर दिया है। उसका कहना है कि ये लोगों में दहशत फैलाकर सत्ता करने की एक चाल है। दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया प्रभारी पियर्सन का कहना है कि म्यांमार में 4 लोगों को फांसी दिए जाने की घटना अन्यायपूर्ण है जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
सऊदी अरब के युवराज यूनान और साइप्रस की यात्रा पर जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान 7 साल से सऊदी अरब में सत्ता के उच्च पद पर आसीन है। 2015 से अब तक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और 2017 से इस देश में युवराज के रूप में वे काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 और 18 में पश्चिमी देशों की यात्राएं की थी। इन यात्राओं से उनका लक्ष्य सऊदी अरब का शासक बनने के लिए एक प्रकार की वैधता प्राप्त करना था और ये भी दिखाना था कि वो सऊदी अरब के पहले नंबर के व्यक्ति हैं। अक्टूबर 2018 को मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ी गलती की जिससे उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रसिद्ध और देश के तानाशाही सरकार के आलोचक पत्रकार जमाल खाशोगजी की 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की में सऊदी अरब के काउंसलेट के अंदर बड़ी ही निर्मम ढंग से हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप उनके ऊपर लगा था।
तालिबान ने घोषणा की है कि वे अफगानिस्तान में मौजूद मंदिरों और गुरुद्वारों की रक्षा करेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मंत्रिमंडल के प्रमुख ने इस देश में मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का वादा किया है। अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों और हिंदुओं के प्रतिनिधियों ने सोमवार को काबुल में मुलाकात के दौरान मुल्ला अब्दुल वासे ने उनसे कहा कि आप लोग अफगानिस्तान में रहिए। उन्होंने कहा कि आपके उपासना स्थलों की सुरक्षा हम करेंगे। तालिबान नेता अब्दुल वासे ने इस मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान सारे ही अफगानियों का घर है और यहाँ के सिख तथा हिंदू इसी राष्ट्र के सदस्य हैं। उनका कहना था कि इन अल्पसंख्यकों के उपासना स्थलों की रक्षा स्वयं करेंगे और संपत्ति संबंधी उन्हें कोई भी समस्या होगी तो उसका भी समाधान करने में सहायता करेंगे।
द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ आज दिलाई गई। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह स्थानीय समय के अनुसार 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और उन्हें पद तथा गोपनीयता की शपथ दी गई। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे आले सऊद शासन के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की संभावित यूनान और साइप्रस यात्रा के बारे में।
सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान।
और फिर बात करेंगे भारत और चीन को लेकर अमेरिका की षड्यंत्रकारी योजनाओं के बारे में।
भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लद्दाख में।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां इस देश को पहली महिला आदिवासी के रूप में 15वीं राष्ट्रपति मिलने के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
ईश्वर की शपथ लेती होंगी।
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कुछ यूरोपीय देशों की यात्रा के बारे में। बिन सलमान की यात्रा को लेकर जानकार हलकों का क्या है कहना, इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी
محمد مہندی.
سعودی یوراج محمد بن سلمان منگلوار سے یونان اور سائپرس کی یاترا پر جا رہے ہیں. محمد بن سلمان 7 سال سے سعودی عرب میں سطح کے اچ استھان و پد پر آسین ہیں. وہ ورش 2015 سے اب تک سعودی عرب کے رکشا منتری اور ورش 2017 سے اب تک اس دیش میں یوراج کے روپ میں کام کر رہے ہیں. محمد بن سلمان نے ورش 2017 اور 2018 میں پشمی دیشوں کی یاترا کی تھی. ان یاتراؤں سے ان کا لکش سعودی عرب کا شاسک بننے کے لیے ایک پرکار کی ویدتا پراپت کرنا تھا اور یہ دکھانا تھا کہ وہ سعودی عرب کے پہلے نمبر کے راج نیتا ہیں. اکتوبر 2018 کو محمد بن سلمان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی جس سے ان کی چھوی کو بہت نقصان پہنچا. سعودی عرب کے پرسدھ اور اس دیش کی تاناشاہی سرکار کے مکھر آلوچک پترکار جمال خاشقجی کی 2 اکتوبر ورش 2018 کو ترکی میں سعودی عرب کے کونسلیٹ کے اندر بڑی ہی نرممتا سے ہتیا کر دی گئی اور ان کے شریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. خاشقجی کی ہتیا کے آرمبھک گھنٹوں میں سنچار مادھیموں نے اعلان کیا کہ یہ اپرادھ محمد بن سلمان کے آدیش سے انجام دیا گیا اور ترکی کی سرکار نے سانکیتک روپ سے کہا تھا کہ ہتیا محمد بن سلمان کے آدیش سے کی گئی ہے. ترکی کی اس پرتکریا سے سعودی عرب اور محمد بن سلمان پر دباؤ میں وردھی ہو گئی. بن سلمان اس اپرادھ سے پہلے بہت پشمی دیشوں کی یاترا پر جایا کرتے تھے, پرنتو اس ہتیا و اپرادھ کے بعد انہوں نے پشمی دیشوں کی یاترا کے واتاورن پرتیکول دیکھا اور پشمی دیشوں کی یاترا کے بجائے کچھ عرب دیشوں کی ہی یاترا پر سنتوش کیا. بن سلمان نے جن غیر عرب دیشوں کی یاترا کی وہ کیول ترکی ہے. اب 4 سال کا سمے بیت رہا ہے اور طے یہ ہے کہ بن سلمان کل منگلوار سے یونان کی یاترا پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سائپرس کی یاترا پر جائیں گے. دوسرے شبدوں میں جمال خاشقجی کی ہتیا کے بعد محمد بن سلمان کی کسی پشمی دیش کی یہ پہلی یاترا ہوگی اور یہ یاترا اس بات کی سوچک ہے کہ بن سلمان دباؤ سے باہر آ گئے ہیں. ابھی حال ہی میں امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن کی سعودی عرب کی یاترا اور بن سلمان سے ان کی ملاقات سے وشو جنمت میں یہ سندیش گیا کہ بن سلمان کے بارے میں امریکہ کا درشٹکون نرم ہو گیا ہے, جبکہ جو بائیڈن نے ورش 2020 میں چناوی پرچار کے دوران کہا تھا کہ جمال خاشقجی کی ہتیا کے کارن وہ بن سلمان اور سعودی عرب کو الگ تھلگ کر دیں گے, پر سعودی عرب کی یاترا کے دوران بائیڈن نے پوری طرح اپنے وعدے کی اندیکھی کر دی. اسی کارن بہت سے وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ بائیڈن کی یاترا کے اصلی وجیتا محمد بن سلمان تھے. محمد بن سلمان اپنی یونان یاترا کے دوران اس دیش کے پردھان منتری سہت ورشٹھ ادھیکاریوں اور راج نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اور کچھ سمجھوتوں پر ہستاکشر بھی ہوں گے. جانکار حلقے محمد بن سلمان کی اس یاترا کو دوسرے پشمی دیشوں کی یاترا اور ان کے ساتھ سمبندھوں کو مضبوط بنانے کا آرمبھک بندو اور بھومکا مان رہے ہیں اور وہ بن سلمان کی حالیہ ترکی مصر اور جارڈن یاترا کو اسی پریپیکچ میں دیکھ رہے ہیں.
اور اب چرچا کرتے ہیں بھارت چین سیما پر ایک بار پھر بڑھتے تناؤ کے بارے میں. کیا دونوں پڑوسی دیشوں کے بیچ ہر دن خراب ہوتی استھتی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے؟ اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم.
بھارتی میڈیا رپورٹوں کے انوسار لداخ میں چین سے ملنے والی سیما پر چین کے بڑھتے اتکرمن کے چلتے بھارت کی وایو سینا نے لڑاکو ویمانوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے 2020 میں پوروی لداخ میں بھارت اور چین کے بیچ گتیرودھ کی استھتی بن گئی تھی جس نے بعد میں ہنسک روپ لے لیا تھا. 15 جون 2020 کو چینی سینکوں کے ساتھ ہاتھاپائی میں 20 بھارتی سینکوں کی موت ہو گئی تھی. کمانڈر استر کی کئی وارتاؤں کے بعد بھی چین کے ساتھ یہ مسئلہ پوری طرح نہیں سلجھا ہے. اس گتیرودھ کے کارن کئی چینی ایپ پر بھی بھارت نے پرتیبندھ لگا دیا تھا. بھارتی کمپنیوں پر چینی کمپنیوں کے افسروادی ادھیگرن کو روکنے کے لیے اور کورونا مہاماری کے دوران آرتھک استھتی کا فائدہ اٹھانے کی آشنکا کے چلتے بھارت سرکار نے 18 اپریل 2020 کو FDI نیتی میں بدلاؤ کیا تھا. دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے دونوں دیشوں کے بیچ سیما پر جاری گتیرودھ کے باوجود بھارت اور چین کے بیچ ویاپارک سمبندھ اب تک کے اچھتم استر پر ہیں۔ بھارت کی مکھیہ وپکشی پارٹی کانگریس نے پردھان منتری نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، ایک اور جہاں بھارت اور چین کی سینائیں ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لیے کھڑی ہیں، وہیں مودی دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک سمبندھ بڑھا رہے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجنیتک اور آرتھک پرتسپردھا کے باوجود دونوں دیش سینے ٹکراؤ سے ہونے والے نقصان کا ارتھ بخوبی سمجھتے ہیں، اسی لیے دونوں کا یہی پریاس ہوتا ہے کہ سیما پر تناؤ نہیں بڑھنے پائے۔ لیکن امریکہ جیسی پربھاوشالی شکتیوں کے پربھاؤ میں استھتی بگڑتی جا رہی ہے اور دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کے بیچ بدگمانی پھیلتی جا رہی ہے۔ سرکشا گٹھ بندھن کے گٹھن کے بہانے امریکہ اور اس کے یورپی سہیوگی انڈو پیسیفک رڑنیتی کے تحت چین کے لیے چنوتیاں اتپن کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے آرتھک اور راجنیتک کھیتروں میں چین کی پرگتی کو روکا جا سکے۔ بھارت بھی اس رڑنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جیسا کہ بھارتی ودیش منتری نے اس سندر میں کہا تھا، پشچم کو اپنی اس مانسکتا سے باہر نکلنا ہوگا کہ اس کی سمسیا پوری دنیا کی سمسیا ہے، لیکن دنیا کی سمسیا اس کی سمسیا نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو وشودیالیہ کے پروفیسر سمر سنگھ کا کہنا ہے، بھارت کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چین کا دشمن بن جائے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ چین کا سہیوگی بن جائے اور وشیش معاملوں میں اس کے سہیوگی کے طور پر ویوہار کرے۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت کی 15ویں راشٹرپتی کے بارے میں۔ دروپتی مرمو بنی دیش کی 15ویں راشٹرپتی، بولی غریب بھی دیکھ سکتا ہے بڑے سپنے، میں ہوں اس کا ثبوت۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سمواددتا شمشاد کاظمی۔
دروپدی مرمو نے بھارت کی 15ویں راشٹرپتی اور پہلی مہیلا آدیواسی راشٹرپتی کے روپ میں شپت لی۔ संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जहां संसद के दोनों सदनों के सांसद, राजनीतिक मिशनों के प्रमुख और भारत सरकार के नागरिक एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि आजाद भारत में पैदा होने वाली वे भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर उन्हें निर्वाचित करने के लिए सभी सांसदों और विधायकों का आभार प्रकट किया और कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा चुना जाना इस बात का सबूत है कि इस देश में गरीबों का भी सपना साकार हो सकता है।
राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने पार्षद से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और वे मंत्री बनी। उन्होंने इससे पहले राज्यपाल का संवैधानिक पद भी ग्रहण किया था। शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन गईं, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों संसद भवन के लिए रवाना हुए। द्रौपदी मुर्मू ने आज सबसे पहले राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञात रहे कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में इस पद के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में अपने प्रतिद्वंद्वी यशवंत सिन्हा को पराजित किया था, जो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे। भारत के आम नागरिकों का कहना है कि देश की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत देश की नई राष्ट्रपति से बहुत सी अपेक्षाएं हैं।
द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई है ना, वो बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में सुने हैं, उनसे हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। वो हमारे देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी।
युवाओं को भी उनसे बहुत उम्मीद है कि कोई नया चुना गया है पहली बार तो कुछ डिफरेंट होगा।
नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया। भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होने के अतिरिक्त तीनों सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे तेहरान में होने वाली ईरान, रूस और तुर्की की महत्वपूर्ण शिखर बैठक की। तेहरान में इस्लामी गणतंत्र ईरान, तुर्की और रूस की निर्णायक और नई दिशा तय करने वाली शिखर बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान अपने शिष्टमंडल के साथ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने शिष्टमंडल के साथ तेहरान पहुंचे। ये शिखर बैठक अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पश्चिम एशिया के उस दौरे के बाद हुई जिसे लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और अमरीका के भीतर भी बहुत सारे गलियारे बाइडेन की यात्रा को नाकाम यात्रा बता रहे हैं। ईरान, रूस और तुर्की ने अपनी शिखर बैठक में सीरिया शांति प्रक्रिया पर बात की, विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि सीरिया की जनता को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार है। यह आस्ताना प्रोसेस के तहत आयोजित होने वाली सातवीं बैठक थी। शिखर बैठक में राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि सीरिया के भविष्य का फैसला इस देश की जनता के जरिए ही होना चाहिए। इस देश पर कोई नया हमला हालात को अधिक जटिल कर देगा। श्री रईसी ने कहा कि सीरिया संकट को लगभग 11 साल हो रहे हैं। अब भी ईरान का यही मानना है कि सीरिया संकट का समाधान केवल राजनीतिक प्रक्रिया से ही हो सकता है, सैनिक कार्यवाही से हालात खराब होंगे।
با گذشت حدود 11 سال از آغاز بحران سوریه جمهوری اسلامی ایران همچنان معتقد است تنها راه حل بحران سوریه سیاسی بوده و اقدام نظامی نه تنها کارگشا نیست بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
श्री रईसी का इशारा तुर्की के उस कार्यक्रम और मंसूबे की तरफ था जिसके तहत वो उत्तरी सीरिया के इलाकों पर हमला करने की योजना बना रहा है, मगर इस योजना का ईरान ने खुलकर विरोध किया।
ما از گذشته به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه همواره از راه حل سیاسی در چارچوب توافقات انجام شده از جمله برگزاری مذاکرات قانون اساسی سوریه حمایت نمودیم.
राष्ट्रपति रईसी ने सीरिया में अमेरिका की एक तरफा कार्यवाहियों की भी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया देशों पर लगाए जाने वाले इस प्रकार के प्रतिबंधों का हम विरोध करते हैं और हम सीरिया की सरकार और जनता का समर्थन करते रहेंगे। शिखर बैठक को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की जो सीरिया के प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करके इस देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा कि वो सीरिया को मानवता प्रेमी सहायता दे। सीरिया संकट के राजनीतिक समाधान के बारे में राष्ट्रपति पुतिन का कहना था कि समावेशी वार्ता के लिए अच्छे कदम उठाने की जरूरत है ताकि सारे सीरियाई मिलकर देश के भविष्य का फैसला करें। शिखर बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि आस्ताना प्रक्रिया ने सीरिया में शांति की स्थापना के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। बैठक की समाप्ति पर एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि आस्ताना प्रक्रिया के तीनों गारंटर देश जोर देते हैं कि सीरिया विवाद का कोई सामरिक समाधान नहीं हो सकता और तीनों देशों ने एक मत होकर कहा है कि आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने के लिए वे आपसी सहयोग जारी रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एहसान किबानी का कहना है कि ये शिखर बैठक सीरिया संकट के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रही और इस बैठक के इतर जो मुलाकातें हुई वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।
Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan were in Tehran on Tuesday to attend a trilateral summit aimed in large part at helping restore peace and stability to Syria. The three countries are considered guarantor states of peace in Syria, known as the Astana format. Throughout the day, multiple bilateral meetings were held. Both Putin and Erdogan met with the Supreme Leader of Iran. Ayatollah Ali Khamenei told the Turkish president that the issue of the Syrian territorial integrity is very important, saying any military action in northern Syria would definitely harm both Turkey and Syria and would instead benefit terrorists. The leader also called for increased trade volume between the two neighboring countries. To that end, President Ebrahim Raisi and Erdogan announced during a press conference a pledge to increase their bilateral trade to a record high of $30 billion. Ahead of the summit, Tehran and Moscow signed a memorandum of understanding outlining a deal.
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
शिखर बैठक के साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण रही। गत मंगलवार की शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली इस मुलाकात में इस्लामी इनकलाब के लीडर ने पश्चिम की मक्कारी भरी नीतियों से होशियार रहने पर ताकीद की। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौतों व सहमतियों को आखिरी मंजिल तक ले जाने और उन्हें अमली जामा पहनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच लंबी मुद्दत के सहयोग को दोनों के लिए बहुत फायदेमंद बताया। आयतुल्लाह नज़मा खामेनेई ने बल देकर कहा कि दुनिया में होने वाली घटनाओं से ईरान रूस प्रगतिशील आपसी सहयोग की जरूरत की निशानदेही होती है। सुप्रीम लीडर का यह कहना था कि दोनों देशों के बीच तेल और गैस सहित अनेक क्षेत्रों में हुए समझौतों व सहमतियों को अमली जामा पहनाने तक भरपूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जंग एक हिंसात्मक और कठोर चीज है और इस्लामी गणराज्य कभी भी इस बात से खुश नहीं होगा कि आम लोग इसकी जद में आए, लेकिन यूक्रेन के मामले में अगर रूस ने पहल न की होती तो सामने वाला पक्ष अपने मंसूबे के मुताबिक जंग की शुरुआत करता। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर ने सीरिया के मामले को बहुत अहम बताते हुए कहा कि सीरिया का एक अहम मुद्दा पूर्वी फुरात के तेल से मालामाल उपजाऊ इलाकों से अमरीकियों को बाहर निकालना है। इस इलाके से अमरीकियों को बाहर निकालकर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। लंदन स्थित टीकाकार डॉक्टर एना मातवीना का कहना है कि यूक्रेन जंग के मद्देनजर भी ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। रूस के राष्ट्रपति का ईरान दौरा खास संदेश रखता है और इसके खास आयाम हैं।
Yes, that visit is incredibly important. We need to bear in mind that this is already the second time that President Putin is meeting with Iranian leadership since the start of the war in Ukraine in February. First time they met in Ashgabat on the margins of the oil summit. So three issues on the agenda all incredibly important. One is grain, export of grain from Ukraine, how to do it, how to make sure that Russia comes as a winner with strengthened international alliance behind it and not lose face. Secondly, the issue of Russia and Iran have a counterweight to Turkey. They are trying to do it. They are trying to use political means. That means that high-level diplomacy is geared into action because they are very reluctant to confront Turkey in Syria militarily, especially now in the time when these three players need more solidarity among them.
वहीं दूसरी ओर ईरान के दौरे पर आए तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई से मुलाकात की। आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई ने इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के बीच व्यापारिक सहयोग को खास तौर पर बढ़ाने पर ताकीद की और ज़ायनी शासन को इस्लामी मुल्कों के बीच फूट और विवाद की जड़ बताया। इसी तरह उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कि अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन फिलिस्तीनियों की प्रभावी प्रगति को नहीं रोक पाएगा सीरिया के मामले में कहा कि सीरिया की संप्रभुता का सम्मान बहुत अहम है और उत्तरी सीरिया में किसी भी तरह का फौजी हमला तुर्की सीरिया सहित पूरे क्षेत्र के नुकसान और आतंकवादियों के फायदे में होगा। इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने इस मुलाकात में ईरान तुर्की की मौजूदा गुंजाइश की तुलना में दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सहयोग और लेन देन के स्तर को बहुत कम बताते हुए कहा कि इस मामले को राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात में हल किया जाना चाहिए। आर्मन जॉर्जियन फ्रांस के वरिष्ठ टीकाकार हैं। उन्होंने फ्रांस के अंग्रेजी भाषा के टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अपना विश्लेषण कुछ इस तरह पेश किया। उनका कहना था कि इस मुलाकात से कई संदेश दिए गए हैं।
I think there's a couple of messages that Putin is sending here. One is that Russia is still a player on the world diplomatic stage, that it hasn't been so sucked into, you know, the military planning and the day-to-day conduct of the war in Ukraine, that it can't focus on other parts of the world. And the other message I think he's trying to send is that Russia is still a Middle East player, and of course its military intervention in Syria a few years ago very much highlighted that. Now I think he's trying to show that Russia wants to build on its existing role as a crucial support for that whole Syria-Iran axis. And remember, who opposes that Syria-Iran axis? It's the West. So there's a West anti-Western agenda here as well. You know, so President Biden visits the Middle East. Just after that, President Putin visits the Middle East.
आर्मन जॉर्जियन का कहना है कि सीरिया संकट हो, पश्चिमी देशों की पाबंदियों का मुद्दा हो या यूक्रेन जंग और उसके चलते खाद्यान्न संकट की बात हो, इन सभी विषयों के संदर्भ में तेहरान में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इन बातों से साफ जाहिर है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान किस प्रकार की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और पड़ोसी व इलाके के देशों के सिलसिले में उसका क्या विजन है। ईरान के विजन की खास बात यह है कि इसमें इलाके के देशों के साथ पारस्परिक सम्मान के आधार पर सहयोग बढ़ाने का अनुकूल विमर्श मौजूद है। यही वजह है कि ईरान क्षेत्रीय सहयोग को व्यवहारिक रूप से बढ़ाने में कामयाब भी रहा है। ईरान और रूस आपसी सहयोग को नए ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस और दीर्घकालीन कदम उठा रहे हैं। ये याद रखने वाली बात है कि रूसी राष्ट्रपति के तेहरान दौरे के अवसर पर ही रूस की विशाल कंपनी गाजप्रोम ने ईरानी कंपनियों के साथ 40 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के समझौते किए हैं। वहीं ईरान और तुर्की के सहयोग की बात की जाए तो ये सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है। कोरोना के चलते आर्थिक व व्यापारिक लेन देन में कुछ कमी तो जरूर आई, लेकिन अब दोनों देशों के नेता इस लेन देन को 30 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दो देशों के बीच आपसी सौदे हैं जिनमें किसी भी बाहरी दबाव का कोई रोल नहीं है। ईरान की ये पुरानी नीति है जो पश्चिमी देशों की समझ में अब तक नहीं आ सकी। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण यहीं पर समाप्त होता है।
دوستو یہ تھا کاریکرم وشو درپن جسے پیش کیا احمد عباس نے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سبھا کا انتیم شما کیجیے گا سبھا کا انتیم کاریکرم صحت کا راز.
صحت کا راز.
دوستو کارکرم صحت کا راز کے ایک انکڑے کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے. آج ہم آلبالو یا کھٹی چری کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں.
پچھلے کارکرم میں ہم نے آپ کو چیری کے بارے میں وستار سے بتایا تھا. اس کارکرم میں آپ کو چیری کے لابھ, اس کے وبھن پریوگ اور اس کی اوشدھیہ وشیشتاؤں کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم جس پھل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ چیری سے ملتا جلتا ہوا پھل ہے, جسے فارسی میں آلبالو اور انگریزی میں کھٹی چیری کہتے ہیں. اس کو سور چیری, ٹریک چیری اور ڈوارٹ چیری کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے.
اس پھل کا ویگینک نام ہے بلگیریس سیریسس. چیری کی ہی بھاتی یہ بھی ڈارک براؤن پھل ہے جو سامانیتہ پشچمی ایشیا اور یورپ میں ادھک پیدا ہوتا ہے. ایران میں بھی کھٹی چیری کی پیداوار ہوتی ہے. ایران کے پشچمی کھیتروں وشیش کر کردستان میں یہ پھل ادھک ماترا میں پیدا ہوتا ہے.
وشو سواستھیہ سنگٹھن فاو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سن 2018 میں پورے وشو میں آلبالو یا کھٹی چیری کا اتپادن 40 لاکھ ٹن تھا. وشو میں سروادھک کھٹی چیری پیدا کرنے والے دیشوں میں ترکی, روس, پولینڈ اور امریکہ سروپری ہیں. ایران میں پرتی ورش 1 لاکھ ٹن کھٹی چیری پیدا ہوتی ہے. اس پرکار سے ایران وشو میں آلبالو پیدا کرنے والا چھٹا دیش ہے. ایران میں پیدا ہونے والی کھٹی چیری کو روس, قطر اور عراق جیسے دیشوں کو نریات کیا جاتا ہے.
دوستوں آلبالو یا کھٹی چیری ایسا پھل ہے جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. ایسے میں سوکھے آلبالو کے نریات کو پراتھمکتا دی جاتی ہے. ایران میں سوکھا آلبالو خوراسان پرانت میں پیدا ہوتا ہے جو سواد کی درشٹی سے بہت ہی اچھا مانا گیا ہے. اس کو اس کے پراکرتک سوروپ میں ہی سکھایا جاتا ہے جس کے کارن اس کی وشیشتائیں کم نہیں ہونے پاتی. مدھیہ پورو میں ایرانی کھٹی چیری کی مانگ انیہ ستھانوں کی تلنا میں ادھک ہے.
گرمیوں کے موسم میں پیدا ہونے والے اس پھل کو کئی پرکار سے پریوگ کیا جاتا ہے. اسے مٹھائی بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا جوس بھی پایا جاتا ہے. اس کی جیلی بنائی جاتی ہے. کہیں کہیں پر کھٹی چیری کا آچار بنا کر بھی کھایا جاتا ہے.
کھٹی چیری یا آلبالو کا پیڑ چھوٹا ہوتا ہے. انوکول واتاورن میں یہ بہت آسانی سے پیدا ہوتا ہے. اس کے پتے انڈاکار نکیلے ہوتے ہیں. یہ پتے کٹاودار ہوتے ہیں. اس کے بھیتر چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. کچھ آلبالو کالے رنگ کے ہوتے ہیں کنتو ان کی جاتی بہت ہی درلب ہوتی ہے. کھٹی چیری کے بھیتر اینتھوسیانین درویہ پایا جاتا ہے جس کے کارن اس کا رنگ لال ہوتا ہے اور اس اینٹی آکسیڈنٹ میں کئی پرکار کی وشیشتائیں پائی جاتی ہیں.
مشیگن وشودیالیہ میں کیے گئے شوھ سے پتہ چلتا ہے کہ کھٹی چیری کے بھیتر اوتکوں کی سوجن کو کم کرنے کے لیے جو سر درد کا کارن بنتی ہے ایسپرین کی گولیوں کی تلنا میں 10 گنا ادھک پربھاوی ہے. یہ بہت ہی سوادشت پھل ہوتا ہے جس کے بھیتر کئی اوشدھیہ وشیشتائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس پھل میں موجود کھنیجوں میں لوہ, کیلشیم, فاسفورس,
کلورین، سلفر، میگنیشیم، سوڈیم، پوٹیشیم، تانبا، جستہ، مینگنیز اور کوبالٹ شامل ہیں۔ آلبالو کے بھیتر الیکھنیہ ماترا میں وٹامن سی پائی جاتی ہے، جس کے کارن یہ جہاں پر شریر کی روگ پرتیرودک شمتا کو صحیح رکھتا ہے، وہیں پر نزلہ اور کھانسی زکام سے بچائے رکھتا ہے۔
یہ پھل شریر کے بھیتر لو کو جذب کرنے میں سکشم ہے، جس کے نتیجے میں شریر کی پرتیرودک شمتا سنکرمن کے مقابلے میں مضبوط کر کے اسے بیماریوں سے سنگھرش کرنے میں سکشم بناتا ہے۔ کھٹی چیری میں موجود پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ اچھ رکت چاپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں کوریسٹین ہوتا ہے جو سب سے شکتیشالی اینٹی آکسیڈنٹ میں سے ایک ہے، جو خون کی چربی کے بڑھنے میں بادھا بنتا ہے۔
کچھ ایسے تتو ہوتے ہیں جن کے بھیتر اینٹی کینسر کی وشیشتائیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کیوریسٹین ہے۔ تازہ کھٹی چیری اور سوکھی ہوئی کھٹی چیری میں کیوریسٹین بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے۔ اس پھل میں موجود ایمیگڈیلین کینسر کے ٹیومر کے آکار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آلبالو میں وٹامن سی اور اینتوسائنین ہوتے ہیں، پرتیرکشا پرنالی کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کی ایک وشیشتا یہ بھی ہے کہ یکرت توچہ، پیٹ، پھیپھڑے اور استن کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں الیکھنیہ بھومیکا ہے۔
کھٹی چیری کی ایک وشیشتا یہ بھی ہے کہ شریر کے بھیتر کے وشیلی پدارتھوں کو یہ نکال باہر کرتا ہے۔ کڈنی میں پتھری کے مریضوں کے لیے یہ لابھ دائک پھل ہے۔ میلاٹونین اور ٹریپٹوفین کے چیری میں موجود ہونے کے کارن نیند کی پرکریا کو یہ ٹھیک کرتا ہے، اور سونے کی پرکریا اور اس کے چکر کو یہ نینترت کرتا ہے۔ کھٹی چیری کا ایسنس وردھ لوگوں کی اندرا کو کم کرتی ہے۔ انسان کو ہونے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری گٹھیا ہے۔ شریر کے جوڑوں میں یورک ایسڈ بڑھ جانے کے کارن یہ بیماری ہوتی ہے، جس میں بہت درد ہوتا ہے۔ یہ بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو لوگوں میں گاؤٹ کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شودھ کرتاؤں نے سدھ کیا ہے کہ چیری کا رس اس درد کو کم کرنے میں سہایک ہوتا ہے۔
چیری کے جوس میں فینولین ایسڈ پایا جاتا ہے، جو رکت چاپ کو کم کرنے میں پربھاوی بھومیکا نبھاتا ہے۔ وہ لوگ جو نیمت روپ سے کھٹی چیری کا پریوگ کرتے ہیں، انہیں بلڈ پریشر کی سمسیا نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آلبالو رکت چاپ میں کتنا پربھاوی ہوتا ہے۔ چکتسکوں کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کے روگیوں کو اپنے کھانے میں کھٹی چیری کو کسی نہ کسی روپ میں پریوگ کرتے رہنا چاہیے۔ کھٹی چیری کی ایک انیہ وشیشتا شریر کی توچا کو ٹھیک بنائے رکھنا ہے۔
کھٹی چیری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اینتھوسائنین شریر کے کاریہ کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے ضروری امینو ایسڈ بننے کا کارن بنتا ہے۔ اینتھوسائنین منشیہ کی توچا کی کوشکاؤں کو سمے سے پہلے بوڑھا ہونے سے بچانے کے ساتھ ہی ساتھ شریر کو پیرا بینگنی کرنوں کے نکاراتمک پربھاؤں سے بچانے میں سکشم ہوتی ہے۔ کھٹی چیری منشیہ کی توچا کو سندر بنائے رکھنے اور تھکن کو دور کرنے میں بہت سہایک ہے۔ چیری کے بھیتر جیوانوں یا کیٹانوؤں سے مقابلے کی کشمتا موجود ہوتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ توچا سے سمبندت کئی پرکار کی بیماریوں کو دور کرنے میں چیری کے بہت فائدے دیکھے گئے ہیں۔
یہ چھوٹا سا پھل توچا کی سطح پر پیدا مہاسے پیدا کرنے والے ہانیکارک بیکٹیریا کو بڑی سرلتا سے ہٹا دیتے ہیں۔ شاید یہی کارن ہے کہ بہت سے توچا وشیشگ لوگوں کو توچا کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے چیری کے پریوگ کے لیے پریرت کرتے ہیں۔ کل ملا کر کھٹی چیری خون کو صاف کرنے والی، شریر سے وشیلے پدارتھوں کو نکالنے والی، نروس سسٹم کو آرام دینے والی، قبض کو دور کرنے والی اور موتر وردھک پھل ہے۔
اوشدھیے گنوں والا یہ پھل موٹاپے کو کم کرنے، ایتھیروکسلیسوریس
या धमनियों में रुकावट का इलाज करने वाला, शरीर को आवश्यक खनिज पदार्थ करने वाला, गठिया का उपचार करने वाला, पथरी को दूर करने वाला और कब्ज जैसी बीमारियों में लाभदायक है। चेरी के बीज का तेल दर्द निवारक, मसों को दूर करने वाला और मुंह के दाग धब्बों को साफ करता है। वे लोग जिनको जिगर की बीमारी होती है उनके लिए खट्टी चेरी के रस का प्रयोग लाभदायक हो सकता है। इस बीमारी में आलबालू के मुरब्बे या जैम को भी ले सकते हैं।
जिन लोगों को जिगर की कोई बीमारी होती है उनके मुंह का स्वाद सुबह के समय कड़वा होता है। जिगर की बीमारी के कुछ अन्य लक्षणों में सांस में दुर्गंध, कब्ज रहना, चेहरे का रंग पीला होना आदि है। ऐसी स्थिति में रोगी को प्रतिदिन एक गिलास ठंडे पानी में चेरी के रस को मिलाकर लगातार कई दिनों तक देना चाहिए। खट्टी चेरी का रस एक स्वादिष्ट पेय भी होता है जो बुखार, यकृत विकार और पाचन तंत्र अर्थात पेट की पुरानी सूजन, गुर्दे की सूजन और अन्य प्रकार की सूजनों वाले रोगियों के लिए उपयोगी है।
आपकी जानकारी में ये बात वृद्धि करेगी कि ईरान के उत्तरी क्षेत्र में जंगली आलबालू या खट्टी चेरी पैदा होती है। इसको स्थानीय भाषा में बेलालुक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एवियम सर्वसिस है। इस वनस्पति की आयु बहुत अधिक बताई गई है। जंगली आलबालू जिस प्रकार का उत्तरी ईरान में पैदा होता है उसी प्रकार का ये फल यूरोप के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। वहाँ पर जिन क्षेत्रों में ये फल पाया जाता है वहाँ इसको पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसको खाने के रूप में प्रयोग न करके इसको शरबत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी और कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अभी आपने कार्यक्रम सेहत का राज सुना, जिसे पेश किया मरियम मेहरदादी और सैयद मीसम ने। इसी के साथ हमारी ये सभा भी अब यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Oh,